प्रदेवी राधिकेतां नमाम्यहम्। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। वंदे नंदब्रजेस्त्रीणां पादरनुमभीक्ष्णश जसां हरि कथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। जय अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन कारिणी सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविष्णुप्रथा गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ पदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्त वृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती धारणी की जय। ब्रजदेवी गण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंदी हरि हरि बोल। आज जम द्वितीया भैया दोजिया जम द्वितीया जम महाराज एवं जमुना देवी के आविर्भाव तिथि है। तो जमुना देवी भगवान के आदेश से ये पृथ्वी लोक में आकर के प्रकट हुई। इस जगत को जगत के सब जीवों को कृपा करने के लिए जैसे गंगा देवी के आविर्भाव है ऐसे ही जमुना देवी के आविर्भाव है। तो जमुना देवी गंगा देवी तो जीवों के पाप ताप को मलिनताओं को धो दूर करके उनको शुद्ध संस्कृत करती है। किंतु जमुना देवी इसके ऊपर जड़ जगत के जीव संसार में पाप पुण्य करके और उनका संस्कार को खो बैठते हैं और उस बाद इसके बाद वो लोग उसके कर्म का फल भोग करना पड़ता है उनको। इस और तीसरे गंगा देवी उनको मुक्त कर देते हैं। किंतु जमुना देवी इन जीवों के जो पाप मलिन चित्तवृत्ति है उसको धोने से साफ तो हो जाता है किंतु उनके वृत्ति जाती नहीं। वो बड़े बहुत कठिन है। जो गंगा देवी धोते करने के बाद जमुना देवी क्या करती है उनके भगवान के साथ संबंध अर्थात प्रेम संबंध प्रतिज्ञा संबंध जोड़ देती है जिससे कि जड़ जगत के स्वार्थ पर जीव अपने स्वार्थों के पीछे सबको दुख देते हैं कष्ट पहुंचाते हैं। जब भगवान में प्रेम संबंध हो जाता है तो जीव का जड़ संबंध रहता ही नहीं पाप पुण्य कहाँ से करेगा। ऐसे जमुना देवी भगवत इच्छा से आविर्भूत तो हुई। उस समय जमुना देवी ने प्रार्थना की उनके भाई जम महाराज को भाई एक बार यदि कोई मेरे पास आता है तो मेरे कुछ मेरे शरण में या स्नान पान दर्शन आदि करता है विशेष करके हमारे जन्मदिन में तो तुम उनको जमलोक से मुक्त कर दोगे। प्रार्थना किया तब जम महाराज कहते हैं तुम्हारे पास आया मेरे पास आया एक ही बात है। यदि तुम्हारे पास कोई शरणागत होता है इसका मतलब मेरे पास भी आया धर्म का पालन करेगा ही करेगा तो पाप करेगा ही नहीं, फिर दंड भोगना ही नहीं पड़ेगा, जम्मूलोक में आना ही नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे शरण में आया उनको तुम मुक्त कर दोगे, ब्रह्म भक्ति दे दोगे, भगवान का भजन करने की वृत्ति दोगे, तो क्यों कुकर्म करेगा? तो फिर आएगा ही नहीं। फिर भी जमुना देवी सब जीवों के लिए प्रार्थना करती है। अब जम महाराज तो जड़ जगत में आए नहीं, जमुना देवी आई, उनको पता है जीवों की अवस्था, क्योंकि बद्ध जीव माया में फंसे हुए हैं, इसलिए कर्म कुकर्म अकर्म विकर्म क्या कर रहे हैं उनका वो इतना होश ही नहीं है। जैसे दारू पीने वाले को होश नहीं रहता है, नाले में पड़े हैं कि कहाँ है, ऐसे ही माया के जो रस पान करने वाले उनको होशाभासी नहीं रहता, माँ बाप को गाली देता है, भाई को मार करके उसका हिस्सा छीन लेता है, कभी कितना गलत काम करता है, सोचता है ये ठीक है, मैं ही ठीक हूँ। तो जमुना देवी कहते हैं जड़ जगत के जीवों के ऊपर दया करना जरूरी है, इसलिए जम महाराज से बहुत प्रार्थना की। तो किसी एक समय इस जगत में एक मांडव्य ऋषि भजन कर रहे थे, तो राजा के पास शिकायत आया राजदरबार में, महाराज आपके राज्य में समस्त चोरों का उत्पात हो गया, सब चीज़ चोरी करके लेके चला गया, कुछ नहीं है, यहाँ तक कि राजकोष से भी चोरी हो गया। तो राजा ने सिपाहियों को कहा चोर पकड़ के लाना है। बोले चोर कैसा था? चोर मोटा तेजा था, और काले थे, चोर को पकड़ के लाना है। तो उन लोगों ने ढूंढा, किंतु चोर ऐसे थे चोरी करके देखा बच नहीं सकता, सब सामानों को लेके और मंडप ऋषि भजन कर रहे थे उनके यहाँ छोड़ के चला गया। राज कर्मचारियों ने ढूंढते ढूंढते ऋषि के पास गया तो देखा सामान हुआ है, ऋषि को पकड़ के लाया। महाराज ये ध्यान करता है, साधु है, और देखो सब सामान हुआ है, उपलब्ध हुआ। तो अब क्या करना है? बोले इसको सूली में चढ़ा दो, आज के दिन छोड़ दो, कल इसको सूली में चढ़ाओ। तो सारा लोग देखने आया, चोर पकड़े गए साधु के वेश में और बड़े तपस्वी हैं, अब आज देखो कैसे पकड़े और कैसे सूली में चढ़ेगा। दुनिया देखने आया, सूली गाड़ दी और तेल से चिकना कर दी, और सब सिपाही दुनिया आया भाग नहीं जाए, और सीढ़ी लगा ली, उनको चढ़ा करके उनके चुतरा में सूली का नोक घुसा दिया, क्योंकि धीरे धीरे उतर आएगा, फट जाएगा, मर जाएगा। किंतु सूली में चढ़ा दिया, थोड़ा सा घुस गया और बैठे ही रहा वहाँ, और नीचे नहीं उतरे और मरे भी नहीं। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, तो राजा का हड़कंप मच गया, सबका खाना पीना सांस लेना बंद हो गया, और जितने लोगों ने पकड़ा उन लोगों के प्राण संकट हो गया। अब तो त्राही त्राही मच गया। राजा बोले ऐसा कैसे, क्या हो रहा है? तो बोले उस ऋषि को, साधु को, चोर को सूली में चढ़ाया, देखो तो कैसे हैं, देखा वो तो बैठे बैठे वहाँ ही भजन कर रहा है, और उसको उतारो, जल्दी उतारो, उतार के लाया। तो महाराज ने माफ़ी मांगा, ये गलत काम किए इन लोगों ने, सिपाही समझदार नहीं है, आपको पकड़ कर ले आया। तो महाराज आपका दोष नहीं है, मेरा कर्म मेरा दोष है। अब ये सीधा जब महाराज के पास पहुँचा, बोले मैं किस बिना कारण का, मैं तो किसी का उपकार किया नहीं, मैं तो भजन करने वाला मेरे को सुली में क्यों चढ़ाया गया? सीधा पहुंच करके जम के पास नारा लगाया। जम महाराज घबरा गया, बड़ प्रणाम आदि किया, पूजा किया, अर्चना किया, बैठाया। बोले एक बात बताओ, तुम सबको दंड देते हो, मेरे को ये दंड क्यों दिया? मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे को अपमान करो? कोई बात नहीं, किंतु सुली में चढ़ा के दिया, खून बहता रहा, मैं बैठा रहा, तो इतना दंड क्यों? और एक दिन दो दिन नहीं, कितना दिन तक? तब जब महाराज बोले, हाँ मेरा क्या गलती है, जैसा आपका कर्म था तो क्या कर्म किया मैंने? बचपन में जब आप 5 साल से भी छोटे थे बालक, तो आपने क्या किया? एक उड़ते हैं पतंग, छोटे छोटे कीड़े, उसे चुतड़ में झाड़ू के सीक घुसा करके रस्सी से बांध दिया, तो उड़ रहा है वो, तो आप आनंद ले रहे हैं उसको खींच करके इधर से उधर उधर से उधर। तो उसके चुतड़ में जब सीक घुस आया था, तो आज आपको इससे आपके चुतड़ में सूली घुस गया, तब बड़ा बिगड़ गया। 5 साल से कम उम्र वाले ज्ञान होता नहीं है। तो आपने जबकि इतना मेरे को दंड दिया, अब आपको भी मैं कहता हूँ, आप भी पृथ्वी लोक में जाओ और तब आपको पता पड़ेगा, जन्म लो तब पता पड़ेगा दुनिया कैसा है। इसलिए वो धर्मराज को विदुर होकर के जन्म लेना पड़ा, आना पड़ा। और कोई कोई कहते हैं कि नहीं, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, किंतु विदुर जी वो अभिशाप के कारण आकर के फिर अंतिम समय धर्मराज में मिल गया। युधिष्ठिर में अंतिम समय जब जाने लगे तो धर्मराज में मिल करके एक हो गए थे। वहाँ कहते हैं कि विदुर जी जब पूरा तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, करते 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 एक तीर्थ में जाके पहुँचे, एक राज्य में। वहाँ के लोग अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, और क्या वहाँ पर 1 रुपये में सब चीज़ मिलता है, कुछ भी खरीदेंगे, मुड़ी मिश्री या दाल चावल, तेल घी, राजा ने नियम कर दिया 1 रुपये में सब चीज़ मिलेगा। 1 रुपये से अधिक कोई भी कीमत नहीं रख सकता, कुछ भी खरीदो 1 रुपये। तो गुरु और चेला ढूंढते ढूंढते बोले, ऐसा देश तो कभी नहीं देखा, क्योंकि चेले को गुरु ने बोला 1 रुपया ले जा, कुछ खरीद करके ला। तो बोले, गुरु जी ये जगह बड़ा अच्छा है, ये देश बड़ा अच्छा है, ये देश में हम रहेंगे 1 रुपया राबड़ी और 1 रुपया मूढ़ी और चावल 1 रुपया, आटा भी 1 रुपये, तो हम राबड़ी खाएंगे और पकवान खाएंगे, मिठाई 1 रुपये में, और ताजे मोटे हो जाएंगे, बड़े बलवान हो जाएंगे। अच्छा बेटा, ऐसा देश में नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर सबका कीमत 1 से है, ऐसा देश में तो कभी 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। बोले, गुरु जी आपका जाना है जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। बोले, देख सावधान रहियो, जब ही विपत्ति पड़े, भीड़ पड़े, तो मुझे याद कर लेना, तभी मैं बचा लूँगा तुझे। मेरा बात अभी सुन। बोले, नहीं सुनूँगा, मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि ऐसा तो देश दिखाई नहीं, राजा कैसा अच्छा है, सब नियम कर दिया, तो अच्छा। गुरुजी चले गए और चेला रह गया। जहाँ जाए बड़े सम्मान, बड़े पूजा, और खूब दान दक्षिणा, और खूब खाने पीने का, और धीरे धीरे चेला खाते पीते इतना मोटा ताजा हो गया, एकदम भारी भरकम का हो गया। अब 40-50 किलो नहीं, 100-200 किलो नहीं, 400-500 किलो का स्तंभ हो गया, बहुत बड़ा भारी, बहुत। अब पहले दर्शनधारी, फिर गुरु बिचारी, भले साधु को दर्शनधारी होना चाहिए, मोटे दर्जे नहीं हुए तो साधु क्या है? साधु तो भारी भरकम का होना चाहिए, नहीं तो कहिए साधु है फक्कड़ है तो गालियाँ पकेंगे। तो बोले वाह, सब लोग और पूजा करने लग गए और गजरा पहनाने लग गए। बोले ये गुरु घंटाल है, शिष्य देखो कैसा है, ये ही जगत गुरु है। बैठ गया, मोस्ट आता जाए मस्त। जब बैठ गया अब राजा के दरबार में ऐसे भीड़ पड़ी, क्या शिकायत आने लग गया, महाराज चोरों की बड़ा उत्पात है। बोले कैसा चोर है, तुम लोग जानते हो? बोले महाराज मोटे ताजे काले हैं, मुस्तंड चोर है, डरता नहीं है। बोले अच्छा तो पकड़ के लाओ। ठीक वो जा करके ये मोटे को ही पकड़ लिया, ये काला मोटा है और हाँ ये चोरी का माल खा करके ये भैंसा हो गया, इसको पकड़ लो, ये चोर का सरदार है। जब से ये आया हमारे देश में तब से चोरी होने लग गया, ये सरदार है, ये सबको सिखाता है और सबका माल खाता है। क्योंकि देखो चोरी बेईमानी नहीं करे, कोई दान दक्षिणा थोड़ी करेगा, ईमानदार व्यक्ति कहाँ से करेगा। हाँ ईमानदारों के पास इतना तो है नहीं दान दक्षिणा देने की, अपने गुजारा करता है कैसे भी, हाँ कहाँ से देगा। चोर चोरी करके लाता है और दान देता है। तो पकड़ लो इसको सरदार को, लाया और बोलते देख एक दिन का टाइम है, किससे मिलना है तो मिल ले, कल तेरे को सूली में चढ़ाएंगे। रोने लग गया, महाराज मैं चोर नहीं हूँ, महाराज मुझे छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ूंगा नहीं, जब से तू आया हमारे देश में तब से चोरी होने लग गया। जब अब क्या करे, याद आया हमारे गुरुजी ने बोला था विपत्ति पड़े तो मुझे याद कर लियो। बोले अच्छा, अब रोने लग गए, गुरु महाराज करके छटपटाने लग गए और प्रार्थना करने लगे। अब तक उनको गुरु मंत्र याद नहीं था और भगवान का नाम भूल गया, क्योंकि जीवा के लालच ऐसे हैं, लालची व्यक्ति को डाले जा रहे हैं हाँ भरे जा रहे हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं और ये पूर्ति कभी होती नहीं। अब इतना भर गया, भारी भरकम हो गया, अब तो हिले नहीं डोले नहीं, अब भाग नहीं सकता। फिर कि गुरु जी को याद किया इतने दिन में, तो गुरु महाराज राजा ने पूछा किससे मिलना चाहते हो, माँ बाप से, कोई तुम्हारा है, तुम्हारा एक गुरु महाराज है, तो कहाँ है? और पता नहीं, सारी दुनिया ढूंढो, सब भेज दिया, इनके गुरु जी को बुलाओ। बुलाया, गुरु जी आ गए, आकर के बोले बेटा देख एक बात सुन, जो मैं कहूँगा तू भी वही कहेगा, मैं उल्टा पुल्टा मत बोलना, जो मैं कहूँगा बस उसी को ही बोलते कहते रहना। बोले अच्छा जैसे कहेंगे गुरु जी, बचा लो मुझे। बोले अच्छा ठीक है। तो सुबह सारा दुनिया आया, उनको खिलाया पिलाया, हाँ अब तुम्हें सूली में चढ़ाएंगे, सब तैयारी हो गई। तो इतने में राजा भी आया, महाराज को कहते महाराज मेरा एक निवेदन है। क्या? इसको सूली मत चढ़ाओ, मेरा चेला है ना, मुझे चढ़ा दो सूली में, हैं गलती तो सरदार जो दिए है, इसका गुरु मैं हूँ, मैंने तो सिखाया सब कुछ, हैं चेला कहता नहीं गुरु जी मुझे चढ़ाओ सूली में, मैं जाऊँगा। गुरु जी कहते नहीं तू नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा, मुझे चढ़ा। वो भी बोलता है, राजा कहते ये क्या झगड़ा पड़ गया, मरने के लिए क्यों इतने दोनों तैयार हो रहे हैं, ये बोलते मेरे चढ़ा, वो बोलते मेरे को चढ़ा, क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं राजा आया, भाई गुरु से पूछा भाई क्या बात है। बोले क्या बात है, ये मुहूर्त तो जो है सब शुभ मुहूर्त है, घोड़े इतना अच्छे घड़ी है, अभिजीत मुहूर्त तो है, इसमें जो कोई शरीर छोड़ेगा वो सीधा एकदम वैकुंठ जाएगा और उसका रथ आ रहा है, अब चेला क्यों जाएगा, मैं पहले जाऊं। राजा बोले ये बड़े बढ़िया बात है, मेरे माँ तो बड़ी बूढ़ी है, मेरे माँ को लाकर चढ़ा दो सूली में, काय को चढ़ाओ बाबा जी इनको, भगा इनको, चल तुम लोग चले जाओ, मैं माँ को चढ़ाऊंगा, हैं और माँ को ला करके सूली में चढ़ा दिया और दोनों भागे। हैं, तो कहते हैं टाका सिर भजा टाका सिर खजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो जब महाराज कहते मैं क्या करूं, दंड किसको मिलता है, देखो वो बड़ी बड़ी घर में राजमाता आज कहाँ गई, वो सूली में चढ़ा दिया राजा ने। हाँ, कैसा बुद्धि है, इसलिए समता साम्यवाद सब एक नहीं है। तुलसी के छोटे पत्ते बड़े पत्ते एक ही है, तुलसी के पत्ते साधु सभी एक है। हाँ, ऐसा नहीं, माँ तो माँ है, बहन बहन है, पत्नी पत्नी है, भाई भाई है, कोई बाप बाप है, हाँ, बेटा बेटा है। ये साम्यवाद इसी को कहते हैं, समानता। ये नहीं कि एक लाठी यहाँ के सब एक बराबर है, हाँ, समन्वय ऐसे नहीं होता। तो जो महाराज कहते हैं कर्म अपनी अपनी फल को लेके आता है, मेरे को देने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूं। छोटा बच्चा है, भाग रहा है, उधर चूल्हे में आँच जल रहा है, बार बार भागता है, हाथ डालता है, बार बार लाता है, छिपा करके बांध करके रखते हैं, किंतु फिर भी जा करके आँच में हाथ डाल ही दिया, छूट कर मिला तो जल गया। जीव अपने स्वतंत्र होने के कारण किसी की मानता नहीं, सुनता नहीं, स्वतंत्रता का अपव्यवहार करके मनमानी करता है, और यदि फल नहीं आए सुधरे नहीं, सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं। जीवों के लिए अंतर्जामी रूप में परमात्मा विराजमान है, प्रेरणा देते हैं, बाहर में संतों के रूप में गुरु के रूप में विराजमान होकर के प्रभु उनको शिक्षा देते हैं, माता पिता गार्जियन होकर के अपना अभिभावक होकर के शिक्षा देते हैं, किंतु सुनता नहीं, मानता नहीं, पशुओं की तरह बुद्धि है, तो कुछ कर्म करके उस फलों को उनको भोगना पड़ता है, नहीं तो सुधरेगा नहीं। तो जब महाराज यमुना जी को बोला, बहन एक बात सुन, मैं सब स्वीकार कर लूँगा, दंड नहीं दूंगा, किंतु स्वतंत्र आवारा होकर के और गुंडागर्दी करेगा और बदमाशी करेगा, इसलिए दुष्टों को दमन करना नहीं, सजा देना नहीं, सुधारना है। अब कैसे, अब यमुना जी में तैरना आता नहीं, जाकर के मानो छलांग लगाया, सबने छलांग लगाया, दो चार बच्चे थे बैठे बैठे किनारे, उसने बोला मैं भी छलांग लगाऊं, और छलांग लगाया, उसको तैरना आता नहीं, वो तो कहाँ गहरे पानी में पहुंच गया, और इनको छलांग लगाना आता है तो तैरना भी आता है, तो उठ करके चला आया, और हमारा ब्रजमंडल परिक्रमा जा रहा है, राधा कुंड पहुँच गए, अब पहुँच गए गोवर्धन परिक्रमा कर, राधा कुंड पहुँचे आज भैया दूज को, तो गुरु जी पूजा करा रहे हैं, चारों तरफ राधा कुंड के चारों तरफ घेर लोग इकट्ठे बैठ गए। अब इसमें सब लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं, कुछ मथुरा के मंदिर के किनारे बच्चे लोग थे, वो भी पानी में उतर गया, माना करें ऊपर बैठो नहीं सुनता, ये लोग पूजा करे तिलांजलि दे के, गुरु जी बोले कोई स्नान नहीं करना, सुने नहीं, बस वो फिसलनी सीढ़ियाँ नीचे उतरते उतरते इतना गहरी कहाँ पहुँच गया पता नहीं, और सब तो परिक्रमा करके आ गया, तो बोले मेरे बच्चे कहाँ हैं, वो बोले मेरे बच्चे कहाँ हैं, और तीन दिन बाद लाश उभर आता है, तो क्या करेगा। इससे स्वतंत्र जीवों को दंड देने की जरूरत नहीं होता, अपना कर्म ही अपने फल लेकर के अपने पास आता है, इसलिए कम से कम यमुना जी के लिए स्वयं जम महाराज कहते धर्मराज, जब तक जीव स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेगा, जब तक बड़ों की बात नहीं मानेगा, धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, तो अधर्म करेगा तो क्या करोगे। इससे उनको ज्ञान देना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है, यह सब कुछ नहीं है जो तुम समझते हो। तब क्या किया धर्मराज ने, कहा यमुना देवी को, तुम तो प्रेम से बंधना चाहती हो किंतु ज्ञान देना जरूरी है, फिर उनके इच्छा से धर्मराज के सरस्वती देवी प्रकट हुई। सरस्वती देवी, सरस्वती सात स्वरों को लेकर के, अर्थात ताल लय मान ऐसा नहीं, समस्त ज्ञान विज्ञान को लेकर के आविर्भूत हुई। इसे कहते हैं सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने, विद्या रूपे विशालाक्षी विद्यांगदेही नमस्तुते। कहते कि देखो ये सरस्वती देवी आई, आकर के सबको ज्ञान देने लग गया, समझाने लग गए, और एक व्यवस्था किया, अब से सबको पढ़ाई करना पड़ेगा, अर्थात विद्या अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्रों का ज्ञान जब तक नहीं है तब तक एक दूसरे को सम्मान भी नहीं करता, आदर सम्मान नहीं करेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे, ढीठ हो जाएंगी। इसलिए आज जो भाई द्वितीया है, इसके दिन की बहुत महिमा है, और क्योंकि गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती तीनों मिलकर के प्रयागराज में जाकर के तीनों का संगम है, तीनों मिले हैं। तो गंगा जी सबको पाप ताप से छुटकारा देकर के, मलिनता को दूर करके, कर्म फलों से मुक्त करके उनको छुटकारा दे देते हैं। सरस्वती देवी ज्ञान देकर के, विज्ञान देकर के अनुभव कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो फिर यमुना देवी उनको भगवत भक्ति के लिए समस्त व्यवस्था करती है। इसलिए प्रयागराज तीर्थराज बनाया उनको, कि आप इन विचारों को करके जीव को अधिकार प्रदान करेंगे, कौन किधर जाएगा। सारे तीर्थराज की महिमा को जानते हैं, तीर्थराज बड़े दयालु हैं। तो एक दिन नारद ऋषि आए, आकर के बोले, अरे तीर्थराज तुम कुशल हो ना? बोला आपकी कृपा है, दया है, भगवान ने मुझे तीर्थराज बनाया, बेनी माधव ने। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास में सब लोग उपहार देने आता है कि नहीं? हैं, सभी आते हैं, सब तीर्थ मेरे पास आता है, मेरे को सम्मान करते हैं, मेरा गुणगान गाते हैं। बोले कभी मथुरा वृंदावन आया तुम्हारे पास, ब्रजधाम आए? तो नहीं, बिगड़ गया, दुखी हो गया, अपने खाता बही और सब कुछ लेकर के सीधा पहुंच गए और वैकुंठ में। नारायण के पास जाकर पूछे, ये ले लीजिए आपका सब कुछ हिसाब किताब, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमें तीर्थराज बेकार बनाया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले मथुरा वृंदावन कभी नहीं आया, हिसाब किताब दिया नहीं और कभी उपहार दिया नहीं, अब हमारे पास आते भी नहीं। बोले अच्छा, तो तुमको मालिक बनाया, इसका मतलब क्या मेरा घर का भी मालिक हो, मेरा भी मालिक बन गए हो? तुम ब्रजराज नहीं, तीर्थराज भले ही हो सकते हो, मेरे घर का मालिक नहीं। पहरेदार पहरेदार होता है, इसका मालिक नहीं, चौकीदार और पहरेदार घर का मालिक हो गया। इतना ही काम कर सकते हो, तुम पहरा दे सकते हो, मालिक नहीं। बस शर्मिंदा होकर, लज्जित होकर के लुट के चला आया। तो कहते हैं प्रभुता पाई मत कहे नहीं, आए मथुरा वृंदावन, यमुना जी की पूजन किया, आराधना किया, स्नान किया, दान किया, तिलक किया, सब कुछ किया, किंतु यमुना जी से प्रार्थना नहीं की कि मुझे कृपा करो कि मैं सबको आदर दे सकूँ, सकाले सम्मान करते सकती देहनाथ यथार्थ, मैं सबको सम्मान करना सीखूँ, आदर करना सीखूँ। ओ छोटा बच्चा स्कूल जाता है ना, तो पढ़ के आता है, ABCD पढ़ के आता है, और आके बोलता है दादा को, दादा आप पढ़े हुए, कभी पढ़े हैं, स्कूल गए कभी? देखो मैं पढ़ के आया, मेरे को ना पुरस्कार मिला, प्राइज मिला, तो तुमने क्या पढ़ा? अरे ABCD पढ़ के आ गया, सब लिखना भी आ गया, आप लिखना जानते हो, कभी लिखा है? दादी हंस रहे। तो अभिमान जो है, ये कहाँ डुबो देता है, पतन का कारण हो जाता है। तो जमहाराज जी कहते हैं जमुना जी के पास, कोई भी आए पहले इनको अभिमानम सुरापानम गौरवम शुद्ध रौरवम प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा तयंग तत्ता हरिम भजित। ये अभिमान जीवों को नहीं आना चाहिए, मैं सब जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मेरे आगे कोई दुनिया में है ही नहीं है। तो ये अभिमान सुरापान अर्थात दारू के तल नहीं, उससे भी अधिक नशाबाज नशा कर देता है। गिनते नहीं, किसी को मानते नहीं, सम्मान आदि देना सीखा नहीं। तो जमुना जी को कहते हैं पहले ही अभिमान को दूर करो, और गौरवम शुद्ध रौरवम है, अपने नाम के आगे ब्रह्मलीन नित्यलीलालीन परिव्राजक 1008 कितनी उपाधि लगा लेता है, पंचतीर्थ नय रत्न सांकतीर्थ शास्त्री कोविद कितने कितने नाम लगाता है, आगे पीछे देखो तो कितना अहंकार। तो इसका क्या परिणाम? ये सीधा रो रब इतना तर्क करते हैं बेबात की है। देखो तो आजकल वेबसाइट में इंटरनेट में और गूगल में और सब दिन रात क्या लड़ाई चलता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके। भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, भगवान की उपासना नहीं की, जीवन नष्ट हो रहा है, आत्मज्ञान लाभ नहीं हुआ, उसके लिए चिंता नहीं है। उसको हराना है, तर्क करना है, उसको डुबोना है। एक समय जनक महाराज के दरबार में बड़े बड़े पंडित विद्वान आते थे और जनक महाराज सबका सम्मान पूजा करते थे। एक समय जमदग्नि ऋषि को बुलाया, बुला करके बोले जनक महाराज शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया, पंडित जी शास्त्रार्थ करो, आप किसी को हरा दोगे उसको तालाब में डुबो देंगे, मार देंगे, और यदि आपको हरा देंगे पंडित लोग आपको मार देंगे। कैसे शास्त्रार्थ? देखो प्राण विसर्जन, सुख खली चबाना। अब तर्क हुआ, जमदग्नि हार गए तो उनको समुद्र पानी में फेंक दिया, मार दिया। उनके बेटा अष्टावक्र ऋषि बड़े तेज, बड़े मुश्किल से साधन किया और आठों अंगों से टेढ़े हैं, कोई कुबड़े कोई कुछ, चलते इधर जाते इधर, देखते इधर कुछ और टेढ़े मेढ़े। एक दिन पहुंच गया, जब समय आया जनक मारे दरबार में, जाकर दरबार में गेट में खड़े हुए घेर के दोनों तरफ हाथ देखे, सब लोग ठाठा करके हंसने लग गए, नंगे धड़ंगे और आठों अंगों से टेढ़े, कुछ बोलते हैं कुछ कहीं शब्द जाता है, आँख कहीं है, गर्दन कहीं है, कुबड़े हैं, ये भी हंसने लग गया। तो जनक महाराज बोलते हैं आप क्यों हंस रहे इतना आज, खुशी है किस लिए है? बोले इन पंडितों को पूछो ये क्यों हंस रहा है। तो पंडित लोग बोले क्यों नहीं हंसेगा, आपके अंग ऐसे टेढ़े मेढ़े और आप ऐसे चाल चलन ऐसे बोली और गेट में खड़े हो गए आकर के। तो जनक महाराज बोले आप क्यों हंस रहे हैं? बोली सारे चमारों को देख करके हंस रहा हूँ, चमड़े के विचार करता है, टेढ़े मेढ़े काला करूठा है, सब एकदम चुप हो गया। बोले इनको आत्मज्ञान नहीं है, चमड़े का ज्ञान नहीं है, इसे आज मैं आया इन पंडितों से तर्क करने, इसको हरा नहीं, मेरे बाप को तो हरा करके डुबो दिया ना, उसका बदला लेने आया। ये पंडितों को मैं आज सबको शास्त्र से हराऊंगा और सबको डुबोंगा, सबको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। अब तो घबरा गए, भागने की भी रास्ता नहीं, क्या करें अब? अब तो जनक महाराज जी बोले आसन दिया, चरण धोया और पूजा किया, आरती उतारे, बोले महाराज इनसे कुछ नहीं होना है, मैं शास्त्रार्थ करने आया। बोले मैं आपके समस्या को समाधान करूं तो आप फिर बात करना, बोले क्या? बोले आपके पिताजी को शास्त्र में हरा करके तालाब में फेंक दिया गया था, इसलिए ना आप दुखी है। बोले सत्य बात है, इन पंडितों ने ऐसा ही किया तो मैं भी बदला लूँगा। ठीक है चलो तालाब के किनारे। तो ले आया, लाकर क्या बोलते हैं जनक महाराज, वो वैदेही थे, वो आत्मतत्व ज्ञानी थे, हाँ परमात्मा तत्वों का अभिज्ञाता था, अभिज्ञान। वो क्या किया, उन्हें पिताजी को याद किया तो देखा क्या, स्वर्गलोक से उतर के आ रहे हैं, आते थे सामने आए, बोले अब आप अपने बेटे को समझाओ। तो बोले क्या बात है, तुम दुखी क्यों? बोले आपको इन लोगों ने मार दिया, तालाब में फेंक दिया। बोले नहीं बेटा, स्वर्गलोक में पंडितों की बड़ी कमी हो गई थी, विद्वानों की कमी थी, अब वहाँ पर कुछ गलत मार्ग अपनाने लग गए थे, इससे हमने क्या किया था। जनक महाराज बोले तुम्हारे पिताजी को देखा, सबसे बड़ा योग्य पंडित है, स्वर्गलोक में भेज दिया इंद्र के आदेश से, देवेंद्र के आदेश से, गुरु बृहस्पति के आदेश से, हमने इनको मारा नहीं, किंतु पांच मिट्टी जल वायु अग्नि आकाश का जो स्थूल शरीर है इसको लेकर तो जा नहीं सकते, आत्मशरीर से पहुंच गया। तब अष्टावक्र ऋषि शांत हो गए। यहाँ कहते हैं जनक महाराज जो चामड़े का व्यापार करते हैं, चामड़े का ये रूप और शकल देखता है, किंतु उनका तत्वज्ञान नहीं होने से हैं वो गलत कार्य करने में सब समय तैयार रहता है। जो आत्मज्ञानी वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, तत्वज्ञानी हैं। तो अब अष्टावक्र ऋषि वहाँ से चले, पिताजी से प्रार्थना किया कि हमें भी ऐसे आत्मतत्व ज्ञान के लिए कुछ आदेश निर्देश करो, कि मैं भी उस मार्ग में चलूं। नहीं तो कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्न नासार विशिष मतमन भिन्नम धर्म से तत्तम निहितम गुहायाम महाजनो जन गत सपंथा। तब पिताजी ने बोला बेटा सुनो, तर्क करने से कोई लाभ नहीं है, तर्क करोगे तुम कुछ करोगे, तर्क करके प्रतिष्ठा ये ठीक है, और दूसरे अगर काट डालेगा तुम फिर काट डालोगे, खंडन मंडन चलता रहेगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हारा आत्मतत्व ज्ञान लाभ नहीं होगा। महाजनो जनगत संबंध था, महाजनों के पदांक अनुसरण करो, उनके कृपा से और उनके आशीर्वाद से तुम्हें आत्मतत्व ज्ञान लाभ होगा। तो बोले वो महाजन कौन है? तब जमरदग्नि कहते हैं स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मुनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर भैया सकीर्भयम। ये द्वादश महाजन है, स्वयंभु साक्षात ब्रह्मा जी, शंभु शिव जी, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, ये जो विदेही जनक महाराज हैं, प्रहलाद जनक भीष्म भीष्मदेव हैं, ये लोग आत्मतत्व ज्ञानी। प्रहलाद जनक भीष्म बलि बलि महाराज आत्मज्ञानी है, वैयासुखी सुखदेव गोस्वामी हैं, और वयम देखो मुझे देख लो हैं। इसलिए महाजनों के जब तक अनुगत नहीं होंगे तब तो आपको आत्मज्ञान लाभ नहीं होगा। उछल कूद करो, शास्त्र पढ़ लो, जड़ ज्ञान लाभ करके तर्क कर सकते हैं, लड़ाई दंगा कर सकते हैं, मारकाट कर सकते हैं और झंझट कर सकते हैं, आप कभी प्रसन्न भी नहीं हो सकते ना दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक जाति पाति ऊंचा नीचा पढ़ा लिखा जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि एध मद मान पुमान, ये अहंकार, मैं उच्चकुल में जन्म लिया, मैं पढ़ा लिखा हूँ, सुंदर उपमान हूँ, मेरे पास बहुत धन सम्पत्ति है, दौलत है, ये अभिमानी व्यक्ति कभी भी भजन आत्मज्ञान लाभ नहीं कर सकता, इसे इनसे तो परे होना ही पड़ेगा। तो गौरवम शुद्ध रौरवम अवाया प्रतिष्ठ है, नाम कमाने के लिए कितने एजेंट लगा रखा है, कितने व्यापार वाणिज्य करके रखा है मेरा नाम हो दुनिया में, कितने नामी बदनामी हो गया कि जेल के शिकंजे में सड़ रहे हैं। आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि वो दूसरे को कभी भी साफ सुथरा नहीं बना सकता हृदय। और हमारे गुरुवर्ग कैसे हैं, वो लोग कोई जाति पाति तो देखा नहीं, ऊंचा नीचा देखा नहीं, पढ़े लिखे देखे नहीं या मूर्खों को देखा नहीं, किंतु उन लोगों ने ऐसे आत्मज्ञान दिया वो सबसे अलग होकर के बस भगवान के चरणों में शरणागत हो गया और भगवत प्राप्ति कर ली है। वो कभी भी दुखी नहीं और किसी को दुखी कर नहीं सकते हैं। जमुना जी और धर्मराज का कथोपकथन बातचीत वार्तालाप ये संहिता है, वैष्णव ने प्रणयन किया धर्म संहिता। इस इन चीज़ों का अध्ययन करने से, धर्म का ज्ञान होने से आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी भी किसी को घृणा नहीं कर सकता, उपेक्षा नहीं कर सकता, उनको अनादर नहीं कर सकता, तिरस्कार नहीं कर सकता। आज तक मैं पिताजी का घर पूजा करता, कल को तबीयत खराब हो गया, कुछ कर नहीं सकते हैं, मानो हाथ पैर गल गया, कोड़ी हो गया हैं, तो हम कितना घृणा करते हैं। और माँ के गोदी में एक बालक जन्म लिया हैं, बीमार हो गया, माँ अपने गोदी से फेंक नहीं सकती हैं। और वही जब बड़ा हो जाता है अब माँ को तिरस्कार करके हैं कहाँ उड़ेल देता है। तो गुरुजी हमारे कहते थे, देखो एक बालक किसान गरीब घर का, बहुत पिताजी ने माताजी ने दूसरे के मजदूरी करके जैसे तैसे करके बालक को पढ़ाया, जब बड़ा हो गया अच्छा ज्ञानी गुनी हुआ तो मजिस्ट्रेट बन गया। अब घर तो आता नहीं, टूटा फूटा घर है, घास भूसा और खाने के लिए वही हाथ की रोटी और थोड़ा चटनी अचार, नहीं तो मिर्ची, नहीं तो थोड़ा गुड़ नमक से मटर से खा लेते हैं। अब आता नहीं है तो माँ कहती है, अरे ये बेटा को थोड़ा देख के तो आओ, तुम कैसे निष्ठुर हो। तो बोले बेटा हमारा खबर नहीं लेता, कभी शकल नहीं देखता, पूछता नहीं, क्यों जाए उसके पास। बोले हम तो बाप, तुम तो बाप हो, हम तो माँ हैं, हमारा तो दिल तो बेटे के लिए है, तो दही ऐसे बेटे की कोई जरूरत नहीं है। किंतु माँ का प्यार और माँ का ममता कैसे छोड़े, बार बार सुबह शाम दिन रात कहती है। तो एक दिन बोला अच्छा मैं जाता हूँ, तो चमड़िया जूता चप्पल पहन ली, घुटनों तक कपड़ा पहन ली, एक साफी बांध ली पगड़ी और कंधे में एक दोपट्टा अंगोछा लेकर चल दिए। जाते 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 पूछते 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 महेश्वर की कोठी में पहुँच ही गया। गेट में पहरेदार है, तो पहरेदार को बोला भैया फलाना आदमी यहाँ है। बोले है, तो पूछो मैं आ सकता हूँ, क्यों पहरेदार तो बिना अनुमति का देंगे नहीं आदेश। बोले पूछा, सहम गया, कौन खड़ा है। तो बोले नाम बोला, वह बुला दो। आया तो अंदर में आके देखा किससे बातचीत कर रहा है, वो कुर्सी खाली थी बैठ गया। तो वो दोनों बात कर रहे हैं, वो कोई ऑफिसर प्रोफेसर होंगे। उसने पूछा ये कौन है, ऐसे बेधड़क आ गया, ऐसे फकड़ बेबे फटे हुए और चितड़े पहने हैं, गंदे मंदे संदे इतना कैसे आ गया यहाँ, ये कौन है। तो अंग्रेजी में बोलता है मेरा हाउस सर्वेंट है। तो सुनकर के बाहर आके पूछता है, भाई हाउस सर्वेंट किसको बोलता है। बोल घर का नौकर को। बोला अच्छा, खोल लिया जूता चमड़ी, जा करके देम मारा अच्छा कस करके। ऑफिसर तू देखते रह गया, भाग गया और मार कर बोले, देख मैं तेरा घर का नौकर नहीं हूँ, तेरे माँ का नौकर हूँ, ले इनाम। मार मुर करके चला गया। तैसे तो हमारे दुर्दशा है, हैं जिस माँ बाप ने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, सिखाया, खिलाया पिलाया, अपना खून बहाया, उस माँ बाप को जब इज्जत नहीं कर सकता तो आदमी क्या प्रभु को भगवान को इज्जत करेगा। हैं ऐसा दुर्दशा प्राप्त व्यक्ति कैसे सुखी होएगा? मैं बड़ा बन गया, इसका मतलब क्या? चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले ली, माँ को क्या कहते हैं, माँ मैंने गलती से कर दी, संन्यास ले ली, यदि आप कहो मैं संन्यास छोड़ दूँ, मैं आपके पास रहूँ। माँ कहते हैं नहीं बेटा, हम धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, तुमने अच्छा काम किया, हमें कितना भी दुख हो कोई बात नहीं है, मेरा कर्म अपने साथ है, किंतु मैं तुमको धर्म से नीचे नहीं आने दूंगा, दूंगी। तो इसलिए धर्म का विचार है बड़ा सूक्ष्म। गलती हम करते हैं, हम कहते हैं हमारे बच्चे हमें मानते नहीं हैं, किंतु हमने कितना अपने माँ बाप को इज्जत दिया। गुरु कहता है शिष्य मेरी बात नहीं मानता है, किंतु मैंने अपने गुरु की कितनी पूजा किया, कितना सम्मान दिया। मैं यदि अपने गुरु पूजा की, गुरु का सम्मान दी, तो मेरे अनुजाई भी मेरे को पूजा करेंगे, आदर करेंगे, ज्ञान हमारे पास रहेगा। आपने अपने माता पिता बड़ों की सम्मान दी है, एक दिन औरंगजेब अपने बच्चों से कहते हैं देख पिताजी का सम्मान आदर करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो बोलते हैं कैसे पिताजी? बोला हम अब तुम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, सिखाया, मर्यादा दिया, तो तुम अभी हमारा सम्मान करना, आदर करना। बोले ठीक है पिताजी, जैसे आपने किया था अपने पिताजी के लिए ऐसे ही करना है ना। क्या किया था उसने? शाहजहान को जेल के शिकंजे बंद करके एक गिलास पानी और एक मुट्ठी चना दिन भर में देते थे, और बहन सारनरा पिताजी के पास दिन भर रोती थी, बटी उपाय नहीं, एक देश का सम्राट होके आज एक गिलास पानी इतना, एक मुट्ठी चना, चाहे भिगो के खाओ, चाहे सत्तू बनाए खाओ, चाहे उबाल के खाओ, इससे अधिक नहीं। तो पिताजी ऐसे करूँ ना, ऐसी सेवा करूँ ना आपकी? तुरंत जहर खाया, खत्म हो गया। तो अपने करनी अपने भरनी। धर्मराज कहते हैं जीवों को कर्मफल ऐसा होता है, मिनट मिनट क्या मुहूर्त का अपना बैलेंस करता है, उसका बोलते हैं प्रारब्ध अप्रारब्ध, कूट पापिश अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश। कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। जब ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, तो मांडव ऋषि बोलते हैं विदुर को, धर्मराज को, 5 साल की कम उम्र वाले बच्चों को आप कभी दंड नहीं देना, सजा नहीं देना। छोटे बालक ज्ञान नहीं है, कुछ गलत कर दिया, 5 साल तक क्षमा कर देंगे? और अच्छा ठीक है, आज से नियम बना देता हूँ, 5 साल के नीचे वाले का कोई पाप नहीं लिया जाएगा, क्योंकि माँ को नोचता भी है, कभी दांत से काट भी देता है, कभी बाल नोच देता है, कभी टट्टी भी करता है, पेशाब भी करता है, कभी लात भी मारता है, तो उसके क्या माँ के लिए अनादर होगा? और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माँ के सामने तू भी बोल देता है ना, तो कितना बुरा लगता है। तो गुरु जी कहते देखो बाप नहीं है, माँ ने बड़े कष्ट से बच्चे पाले, दूसरे हम बर्तन मांज गए कैसे कैसे करके, और जब बच्चा बड़ा हो गया ना, माँ के बिना कुछ जानता नहीं, माँ भी बेटे के बिना जानता नहीं। कुछ दिन बाद शादी हो गया, बहू रानी आई, माँ बहुत खुश है, इतनी सेवा करती है, जैसे बेटे का करते हैं ऐसे भोगी भी करते हैं। एक दिन वो नौकरी से आया, बाहर से आकर देखा बहू रानी बात नहीं करती है, कुछ झुझला रही है, कुछ चिक चिक कर रही है। तो पूछा माँ को क्या हो गया इसको? बोले बेटा मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। तो पड़ोसी जाकर पूछा हमारे बहू को क्या हो गया? और तुम्हारे माँ जैसे डाइन है, चिक चिक करती रहती है और खाना नहीं देती, तुम जाते हो तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या करती रहती है। बस आया एक लट्ठर ले ली, दे मारा हाथ पे तोड़ करके मार करके सड़क में फेंक दी। बताओ ये माँ की पूजा है? वो तो अपना बदला ले ली, उसको भड़का दी है, माँ का इज्जत क्या किया, मार मुर करके फेंक दिया। माँ कहते ये ही मैंने बेटा पाला, आज यही दंड मुझे मिला, आज यदि मैं भगवान के लिए रोती और करती है इतना के पासंग में भी, तो मुझे कभी दुख नहीं होता इतना, आज इसके लिए करा, आज अपने बेटा ही अपने लट्ठर लेकर गए, आज खोपड़ी फोड़ के सड़क में फेंक दी है। तो बताओ ऐसे ज्ञानियों की क्या दुर्दशा होगा? तुम्हें फेंकने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसे धर्मधर आज कहते हैं धर्म का विचार बहुत गहन है, पाप बाप को भी नहीं छोड़ता, गलत करोगे तो दूसरे उसके हिस्सा बांट नहीं लेगा। इसलिए जमुना जी के बाद प्रार्थना करो, धर्मराज के बाद प्रार्थना करो, हैं हमें आश्रय दो महाजनों के, जो कि मुझे सदा पालन करे, सिखाए, समझाए ये गलत है, ये मार्ग में मत चलो। कोई हमारा रक्षक तो हो, कोई समझाने वाला बोलने वाला तो हो, हम किसी को मानते ही नहीं हैं। बोलते गाय माने ना अपनी मोड़ल, बोले पंचों की बात सर पर खूंटा हमारा वहाँ ही रहेगी, हम मानेंगे नहीं किसी को। किंतु जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक कोई मुझे सुधारेगा नहीं, सिखाएगा नहीं, आदेश निर्देश देगा नहीं। इसलिए जमुना देवी से प्रार्थना करो, हे जमुना देवी, हे धर्मराज जमराज, कृपा करो कि मुझे कोई आश्रय मिले, ऐसे सारा मिले महाजनों की, जो कोई मैं कभी भी गलत मार्ग में न जाऊँ, हैं, और अपने ऐसे कमाई न करूँ हमें जीवन भर छोड़ना पड़े, हैं। इसलिए बतलाया महाजनों की, महाजनों जनों गत सपन था, महाजनों का आश्रय लेना ही हमारे लिए कर्तव्य है। अब मैं आज यहाँ तक रखता हूँ, हमारा परिक्रमा जाना है, और भैया दूजे ऐसे आज वासुकोष का तिरुभाव तिथि है, और कल हमारे गुरु महाराज का, त्रिविक्रम महाराज का तिरुभाव तिथि है। तो कार्तिक के महीना में सब गुरुवर्ग परम गुरुदेव महाराज हमारे शरद पूर्णिमा के दिन गए, इसके बाद में धीरे धीरे करके गौड़ीय इतिहासों में ये महीना में करीब करीब दिन में बहुत आचार्य लोग इस जगत से नित्य धाम में पहुँचे। तो कल हम लोग अपना गुरु महाराज जी कुछ वैशिष्ट्य या त्रिविक्रम महाराज जी सुनेंगे, उसके दूसरे दिन ये स्वामी महाराज जो प्रभुपाद इस्कन के गुरु, उनका तिरुभाव तिथि है, हाँ। इसके बाद तो कितने पहले भी गया, हम तो इतना कीर्तन किया नहीं, किंतु उन लोगों के महिमा सुनना, आश्रय लेना, सम्मान आदर प्रदर्शन करना, तो वो हमारे रक्षक है, सदा हमारा पालन पोषण करने वाले हैं। आज यहीं तक रखते हैं, गौर प्रमाण दे हरि हरि।